तलाक के मिसाइल किताबु तलाक में आज हमारा टॉपिक है जिहार के अहकाम, पेज नंबर 90। अभी आप लोग लान कह रहे थे, लियान, लाम की जेर आइन अलिफ, इसी तरह ये जिहार है। जिहार क्या होता है अगर आप इसको अरबी के लफ्ज से देखें, क्या उर्दू में कभी ये लफ्ज आप लोगों ने सुना? कभी बोलिए। जोहर, जोहर का वक्त है, जाहिर होना, जिहार। बेसिकली जाहिर कहते हैं पुश्त को, बैक को। तो जोहर की नमाज को जोहर की नमाज हम क्यों कहते हैं? जोहर की नमाज को जोहर हम इसलिए कहते हैं कि सूरज पलट जाता है उस वक्त। जैसे आपने सुना होगा जवाल का वक्त शुरू हो जाता है, 12 बजे के बाद नमाज अदा की जाती है ना, तो इसी से फिर लफ्ज़ जोहर है। तो जिहार का असल में ये एक टर्म थी, जिस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए उस दौर में एक मर्द अगर अपनी बीवी को ये कह देता था कि तेरी पुश्त यानी बैक मेरी माँ से मिलती है, अंती अलैया का जहरी उम्मी, अंती अलैया मेरे ऊपर का माने जहरी पुश्त उम्मी मेरी माँ की। ये ऐसी है जैसे आज भी गांव में कुछ लोग अपनी बीवियों को कहते हैं आज से तू मेरी माँ बहन है, यानी जहालत की बुनियाद पे कुछ ऐसे लोग आज भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उस दौर का रिवाज क्या था कि जब वो ये लफ्ज़ बोलते थे तो उसके बाद फिर तलाक हो जाती थी, वो बीवी एक किस्म की माँ बन जाती थी। तो एक औरत जिनका नाम हौला था, हज़रत हौला, बूढ़ी भी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ की हालत में, कहने लगी कि मेरे शौहर बीमार भी हैं और बूढ़े भी हैं और उन्होंने गुस्से में मुझे अपनी माँ कह दिया। अब इस लिहाज से तो हमारी तलाक हो गई, लेकिन मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि अगर मैं इस उम्र में उनको छोड़ दूंगी तो उनका क्या बनेगा। यानी नोट कीजिएगा कि इस्लाम कितना खूबसूरत है। आमतौर पे दुनिया में जो वेस्ट में मोहब्बत का स्टाइल है वो शुरू में लव एट फर्स्ट साइट, शादी से पहले की मोहब्बत होती है, और अमूमन फिल्में वहाँ ख़त्म हो जाती हैं जहाँ शादी होती है। लेकिन इस्लाम जो है जिस शादी के निज़ाम को चलाता है वो क्या है कि जितनी शादी पुरानी होती है उतनी खूबसूरत हो जाती है। आपने खुद कई लोगों से ये बात सुनी होगी, वो कहते हैं कि शुरू जवानी तो पता ही नहीं चला, घरदारी और बच्चों में पड़ गए, अब हम एक दूसरे को इंजॉय करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से एक दर्द उस औरत के अंदर महसूस हुआ और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए कि मेरा घर ना टूटे और मेरा शौहर इस बुढ़ापे में मेरे बगैर ना रहे। अच्छा, अब क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोले, क्योंकि वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, कि अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से बात नहीं करते थे। ये तो आज हम लोग जुरत करते हैं ना कि कुछ आता जाता है नहीं और हर बात में हम जवाब देने शुरू हो जाते हैं, कोई पूछता किसी और से और जवाब हम देते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे। अब वो औरत थोड़ी सी अजुर्दा हुई, दिल उसका ख़राब हुआ कि मैं अल्लाह के नबी से कह रही हूँ मेरे लिए कुछ करिए तो आप कुछ कर नहीं रहे। तो आपने कहा कि अल्लाह के किसी हुक्म के आगे मैं नहीं बोल सकता। अब वो औरत वहाँ से उठी, मस्जिद नबी में ही थी, वजू किया, जाए नमाज पे बैठ गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बात बयान करती हैं, कहती हैं कि वो औरत मेरे से थोड़े से फासले पे थी, मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन रही थी, मुझे पता था वो कुछ कर रही है, आहो जा रही, रो रही है, दुआ कर रही है, बट मैं उसकी बात नहीं सुन रही थी। लेकिन थोड़ी देर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के असरात तारी हुए और आपके ऊपर सूरत मुजादिला, जो 28वें पारे की पहली सूरत है, क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुक फ़ी ज़ौजिहा, कि बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर का शिकवा आपसे लेकर आई। तो वो पूरी सूरत में फिर अहकामात नाजिल हुए, एक औरत के आप देखिए कि फरियाद करने पे अल्लाह ताला ने वो जिहार को फिर उसके बाद इनवैलिड कर दिया कि आज के बाद अगर कोई शौहर इस तरह कह भी दे तो उसका कफारा दे देगा लेकिन तलाक नहीं होगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जुमला बड़ा खूबसूरत है, उसको यहाँ बयान किए बगैर इस बात को शुरू नहीं करना चाहिए। कहने लगी कि मैं उस औरत से इतनी करीब थी कि मैं उसको देख रही थी लेकिन मैं उसकी आवाज़ समझ नहीं पा रही थी, मुझे हैरत इस बात की है कि अल्लाह ने सातवें आसमान से उसकी दुआ सुन ली। ये है इन्नल्लाह समीउन अलीम। हम सारी दुनिया को सुनाते रहते हैं और जिसको सुनाना होता है उसको कोई नहीं सुनाते। बाद जब हम कहते हैं हम दूसरों को सुनाएंगे फिर वो अल्लाह को सुनाएंगे, या हम किसी के साथ बात करेंगे तो वो आगे हमारी, इनके आगे, इनकी रब के आगे। आपने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होंगी जिस वक्त हमारा मौजू नहीं है, लेकिन याद रखिए कि अल्लाह को बराह रास्त सुनाना सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है। अब मैं युजीबुल मुस्तर इज़ादाहु, अल्लाह ताला कहते हैं कौन है जो मुस्तर की दुआ को सुन ले। इसी तरह सूरत बकरा में आता है वईज़ा साल कईबाद यन्नी फ़ैन्नी करीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। इसी तरह सूरत काफ़ में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। हमारे लिए इसमें अमल की बात क्या है कि हम किसी भी मामले में डायरेक्ट अल्लाह से बात करें। अब जब हम अल्लाह सुबहाना ताला के साथ अपना ताल्लुक रखते हैं तो हमें किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं होती। आज भी वैसे भी एक जुमला है कि जी कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना मसलों को, मामलात को दुरुस्त करता है। और ख़ानदानी ज़िंदगी में ये बहुत अहम होता है कि आपको जिससे जो बात कहनी खुद कही, अच्छे तरीके से अपने ताल्लुक की बुनियाद पर कहें। जब हम एक से दूसरे को, दूसरे की तीसरे से करते हैं तो बात बिगड़ती है। अब हम यहाँ थोड़े से इसके अहकाम पढ़ेंगे, गो के आज ये नहीं है लेकिन ज़ाहिर है कि दीन का हिस्सा है। तो आइए देखिए अहकाम ज़िहार, ज़िहार के अहकाम है। पहली चीज़, आप लोग इस वक्त तब बुक्स के ऊपर जो आपके है उसको हेडिंग को देखिएगा। बीवी को माँ या बहन कहकर अपने ऊपर हराम कर लेना मना है, शरा में इसे ज़िहार कहते हैं। यानी अगर आज कोई कहता है तो ये गुनाह की बात होगी, ठीक है। ज़िहार करने से बीवी हमेशा के लिए हराम नहीं होती, अलबत्त रुजू करने से कबल कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है। ज़िहार का कफ़ारा एक गुलाम आज़ाद करना या मुसलसल 2 माह के रोज़े रखना या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, ठीक है। इस सब की दलील सूरत मुजादिला की आयत नंबर 2 से 4 है। अल्लज़ीन युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनाहुम। तर्जमा इसका आपके सामने रख देती हूँ, बड़ी तवील आयत है और आपको सिर्फ एक मोहब्बत की खातिर बताऊंगी कि सूरत मुजादिला वो सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आता है। जिसको अल्लाह ताला से मोहब्बत है वो तो ज़रूर ही इस बात को सुनकर खुशी महसूस करेगा कि मेरे रब ने इस चीज़ को मेरे सामने रखा कि मैं हर आयत के साथ उसका नाम सुन लूँ, पढ़ लूँ। तो क्या फरमाए, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं इनकी बीवियाँ इनकी माएँ नहीं हैं। और अब देखिए, माँ कैसे हो सकती है, बीवी माँ कैसे हो सकती है, बेवकूफ़ी की बात है ना। इसी तरह देखिए, यहाँ एक छोटी सी बात कर दूं कि इस्लाम जो है ये मुंह बोले रिश्तों को नहीं मानता। हमारे कल्चर में ये मेरी बहन बनी हुई है, ये मेरा भाई बना हुआ है, ये चचा बने हुए हैं, ये मामू बने हैं, ये सब झूठ है। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ खून के रिश्तों को मानता है, दूध के रिश्तों को मानता है या सहर के रिश्तों को मानता है। इसके अलावा मुंह बोले ऐसे करना और फिर शरीयत की हदों को तोड़ना, गैर महरमों के साथ इस तरह बेतकल्लुफ हो जाना कि जी ये तो मेरे बाप के बराबर है, ये तो मेरे बेटे के बराबर है, इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता, ठीक है। तो फरमाया इनकी बीवियाँ इनकी माएँ नहीं हैं, इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इनको जना है। जैसे आप देखिए, बीवी भी तो माँ नहीं बन सकती ना, या माँ बीवी तो नहीं बन सकती। पीछे सूरत निसा में आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर तरतीब से आप पढ़ रहे हैं, कि उसमें मना कर दिया कि ना तुम औरतों उन औरतों से निकाह करो जिनसे तुम्हारे बाप कर चुके। तो यहाँ क्या पता चला कि इस्लाम में रिश्तों की तमीज़ होती है। वो इस्लाम एक बड़ा महज़ब दीन है, उसमें हर रिश्ते का एक अपना तकद्दुस है और उसको वही जगह देनी चाहिए। ये लोग एक सख्त नापसंदीदा झूठी बात कहते हैं, हकीकत यह है कि अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला। जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें फिर अपनी इस बात से रुजू करें जो उन्होंने कही थी, तो कबल इसके कि एक दूसरे को हाथ लगाए एक गुलाम आज़ाद करना होगा। इसकी तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इससे बाखबर है। जो शख्स गुलाम ना पाए वो 2 महीने के पै दर पे रोज़े रखे कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, और जो इस पर भी कादिर ना हो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक सज़ा है। तो बात वाज़ेह, मैं इसको इतना लेबोरेट इसलिए भी नहीं करना चाहती कि अब ये हुक्म नहीं है, अब खत्म हो गया है। और अगर कोई मर्द करता है तो फिर उसको ये सजा देनी पड़ेगी। यहां अगर आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि कफारा कितना है, मुसलसल 2 महीने के रोजे 60। ये मुसलसल का क्या मतलब है, 5 रोजे रखे, छठे रोजे पे कुछ मसला हो गया नहीं रखा तो फिर अगले से फिर शुरू से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो मेरे आप और खासतौर पर हम खवातीन के लिए बड़ी अहम है, जुबान। जिहार क्या, जुबान से एक लफ्ज निकाला है मर्द ने, तू मेरी माँ जैसी है। क्या तकलीफ हुई, को दर्द भी नहीं हुई होगी, कोई चोट भी नहीं लगी, लेकिन इस्लाम को मुंह के बोले लफ्जों की इतनी कदर है कि रखो 60 रोजे। ये 60 रोजे के रखाए हैं ताकि आइंदा सोच के बोलना। देखिए, जो मर्द लंबी जुबान रखते हैं और बीवियों के ऊपर बदतमीजी से बोलते हैं और उनको जरखरीद समझ लेते हैं, वो असल में इस बात को समझ के देखें कि सिर्फ एक बात का अगर दुनिया में अल्लाह ने पकड़ा तो 60 रोजे रखवा दिए, तो सोचिए आखिरत में क्या पकड़ोगे ऐसी चीज़ों की। तो जुबान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फिर इसके बाद, ज़िहार करने के बाद कफ़ारा अदा करने से पहले अगर कोई शख्स बीवी से सोहबत कर ले तो इसे तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, दोहरा कफ़ारा नहीं होगा। समझ आई, 60 रोजे रखेगा या ये 60 मिस्कीनों को खिलाएगा, अदरवाइज वो बीवी के पास नहीं आ सकता। ये भी तो एक सबक सिखाया जा रहा है ना। आप देखिए कि हम छोटी छोटी बातों में तो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अल्लाह का दीन हमें क्या सिखाता है कि जो बात अल्लाह के कानून से टकरा जाए, जो अल्लाह ने नहीं कहा वो आपने कर दी, या जो कहा था वो ना किया, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब देखिए हम अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्या फ़र्क पड़ता है ना, चलो भाई क्या होता है, चलो भाई वो भी तो देखिए, वो अब्बू के दोस्त ही तो हैं ना, तो अब्बू की उम्र के हैं, अगर वो मेरे सर पर हाथ फेरते हैं, मैं उनके सामने चली जाती हूँ अपनी आराइश के साथ, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। बस लोग कहते हैं, अच्छा जी 60-70 साल की उम्र के मर्द से भी पर्दा करेंगे, कि उनसे कोई हमारी शादी होनी है? नहीं, शादी नहीं होनी, शादी का मकसद पर्दे से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम हद रखता है, हद्दा कि आपको पता है कि नबी सल्लम के अजवाज ने क्या कहा, कि अल्लाह के नबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम तो नाबीना है, उनके आने पे तो हम अपने आप को ऐसे बिठा सकते हैं ना जैसे आम औरत औरतों में बैठी, जैसे इस वक्त मैं आप बैठे हैं, क्या इसी तरह हम उनके सामने बैठ जाएं क्योंकि वह नाबीना है? तो आपने क्या फरमाया था, किसी को याद है? आप तो नाबीना नहीं हो। देखिए, इस्लाम आपके जज्बात की हिफाजत करता है। हम लोग समझते नहीं हैं, बाज़ दफ़ा औरतें जो ना समझी में इस्लाम के खिलाफ हो जाती हैं, हालांकि आप देखिए कि एक औरत है, एक अपनी आराइश सिपाइश अपने मर्द के सामने करेगी तो मर्द के दिल में अच्छे जज्बात आएंगे ना, उससे मोहब्बत मिलेगी, वो उसका इजहार करेगा, उन दोनों में उल्फत बढ़ेगी। अब एक गैर मर्द को भी वही हुसन दिख रहा है, वो आपसे क्या ले सकता है, या आप उसको क्या देंगी? हो सकता है उसके अपने घर में ऐसी खूबसूरती ना हो, तो फितना बनेगा ना। आज अगर हम सिर्फ बेपर्दगी को बंद कर दें, बेहयाई को रोक लें, हमारे घरों के 90% मसाइल खत्म हो जाए। किन से करते हैं मर्द काबुल? हीरोइनों से करते हैं, अपनी सीधी साधी बीवियों का। वो बेचारी 10 जमात पढ़ी बीवी है, आपको अल्लाह ने दे दी, अब रोके वो कहते नहीं ये उस तरह की अदाएं नहीं दिखाती, वो कौन सी, वो जो फलां फिल्म में वो हीरो की दिखा रही थी या वो हीरोइन दिखा रही थी। तो ये बात छोटी नहीं होती, ये बात बहुत बड़ी होती है, और इससे माइंड सेट होता है। और सच बताएं कि क्या आपकी अपनी फीलिंग्स नहीं बदल जाती? आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, जब नहाते हैं, धोते हैं, सजते हैं, आपका घर का काम करने को दिल नहीं करेगा, आपके अंदर एक अदा आ जाएगी। जबकि आप सुबह से उठते हैं, अपने घर के कपड़ों में होते हैं, आप सारे काम कर लेते हैं। हर चीज़ का इंसान के मिजाज पे फर्क पड़ता है, ये मानने की बात है। तो बहरहाल इसके बाद क्या है कि वो मर्द फिर जब तक बीवी से ताल्लुक नहीं रखेगा, जब तक कि वो कफारा अदा ना करे, इसकी दलील देखिएगा। अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुम अन्न रजुलन अता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ज़ाहरा मिन इमरातिही फवक़अ अलैहा فقال يا رسول الله اني ظاهرت من امراتي فوقعت عليها قبل ان اكفر فقال اب یہ آپ لوگ لفظ ادا کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رايت خلخالها في ضوء القمر قال فلا یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا لیکن کفارہ ادا کرنے سے پہلے صحبت کر بیٹھا اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا لیکن کفارہ ادا کرنے سے پہلے صحبت کر لی آپ نے دریا فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا یعنی تجھے اس حد پہ رہنا چاہیے تھا یعنی تجھے اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرنا تھا تو کیوں اس طرح بے قابو ہو گیا کہنے کا یہ مطلب ہے اس نے عرض کیا میں نے چاندنی میں اس کی پازیب دیکھی اور اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا آپ نے ارشاد فرمایا دوبارہ اس کے قریب نہ جانا جب تک کہ کفارہ ادا نہ کر لو اسے ترمذی نے روایت کیا تو آپ دیکھیے کہ اپنے شوہر نے بھی جب اس کی خوبصورتی دیکھی تو اس کے دل میں ارمان پیدا ہوئے نا تو یہی ارمان کسی دوسرے کے دل میں بھی پیدا ہوتے ہوں گے جب وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ زہار ایک چھوٹے سے الفاظ کی بہت بڑی اسلام میں قیمت ہے کوئی مسئلہ کوئی سوال اس سے متعلق ہے ٹھیک ہے اب اگلا حکم جو ہے بڑا اہم ہے دیکھیے گا پیج نمبر 92 ہے احکام الایلا اچھا اس کو پڑھیے مل کے ایلا یہ جو پروناؤنسیشنز ہوتے ہیں نا یہ بہت اہم ہوتے ہیں اب اس کو اب ایلا بول دیں گے اولا بول دیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا نا ایلا ایلا کے اندر بھی علیحدگی کے معنی پائے جاتے ہیں ایلا کیا ہوتا ہے پہلے میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیے پیچھے ہم نے طلاق کا طریقہ ڈیٹیل سے پڑھا ایلا کیا ہے طلاق سے پہلے کی کیفیت ہے یعنی اس کو آپ سمجھیے اور آپ ابھی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج اس معاشرے میں اتنا ظلم ہے کہ کتنی ہی عورتیں اس کا شکار ہوئی ہوئی ہیں ایک مرد بیوی ہونے کے باوجود پاس اس سے تعلق قائم نہ کرے یعنی شوہر بیوی ہیں دنیا کی نظر میں لیکن ایک مرد اپنی بیوی سے صحبت کا تعلق نہ رکھے یا قسم کھا لے کہ میں تیرے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا اور اس بات کو ایلا کہتے ہیں इसकी कोई हद थी? पहले कोई हद नहीं थी। अरब में इतना जुल्म था औरतों के ऊपर कि एक मर्द साल हर साल बीवी के साथ रहते, खुद अपनी ख्वाहिश जहां से मर्जी पूरी करे, अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम नहीं करते थे। अल्लाह की ये बनाई हुई चीज़ है, इंसान की फितरी हाजत है, शुरू में ना भी महसूस हो, वक्त के साथ साथ खुद ब खुद औरतों में भी ये चीज़ डिवेलप हो जाती है। तो क्या हुआ कि अब उस औरत पर जुल्म हुआ, वो घर में है, वो बीवी है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मर्द उससे वो ताल्लुक नहीं पूरे करा। ये ऐसी है कि आपको घर में कोई रखे और खाना ना दे। आपने हदीस सुनी होगी कि एक बिल्ली को भूखा रखा तो वो औरत जहन्नुम में चली गई, सुनी होगी ना हदीस। तो एक औरत को अपनी जौजियत में रखना लेकिन उसके जिंसी हक से उसको महरूम करना, इसके लिए मर्द को अब लिमिटाइज कर दिया, 4 महीने, ओनली 4 महीने। आइए इसको पढ़ लें, फिर मैं इसको अपने लफ्जों में थोड़ा सा आपके सामने रखूंगी। 4 माह से कम मुद्दत के लिए बतौर तंबीह, तंबीह क्या होता है, वॉर्न करना, थोड़ा सा उसके कान खोलना, बतौर तंबीह बीवी के जिंसी तकाजों को पूरा ना करने की इजाजत है। शरा में इसे ईला कहते हैं। ईला की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत यानी 4 माह गुजरने के बाद शौहर को या तो ईला से रुजू करना चाहिए या फिर तलाक दे देनी चाहिए। क्या बात समझ आई? बस दफ़ा क्या होता है कि बीवियों का मिजाज ज़रा बहुत ही अनोखा होता है, हर बात पे ही नखरा है, हर बात पे डांटती हैं, हर बात में गुस्से में है। यानी एक मर्द है वो अपनी बीवी के साथ अच्छा है लेकिन बीवी का मिजाज ठीक नहीं। अब दूसरी सूरत कहे तलाक दे दो, छोड़ दो इसको, इसको धमकियां दो। नहीं, एक मर्द जब अपनी बीवी में कोई ऐसी बात देखे जो नहीं होनी चाहिए और एक दो बार कहने के बावजूद वो नहीं समझ रही, तो सजा देने या जैसे बच्चों को अदब सिखाने के लिए कहते हैं ना, अच्छा मैं तुमसे नहीं बोलता, ये ईला यही है, मैं तुमसे नहीं बोलता। और इसके लिए 4 माह की मुद्दत है। नबी सल्लम ने अपनी बीवियों के साथ भी किया। सूरत अल अहज़ाब में आप पढ़ेंगे कि जब खैबर की जंग हुई और बहुत ज़्यादा मुसलमानों के पास दौलत जमा हो गई तो आपकी सारी बीवियाँ जमा हुई आपस में, वो गठजोड़ किया आपस में कि देखो हमारे भी तो दिन फिरने चाहिए, सबके घरों में अब चूल्हे जल रहे हैं, खाना है पीना है, तो हमारे घर में क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा चलो हम सभी नबी से ये कहती हैं, देखिए सौकन हो लेकिन एक कॉमन कॉज पर जमा हो गई। खैर जब उन्होंने आके अल्लाह के नबी से मुतालबा किया, अब ये मुतालबा कोई हद से बड़ा नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे कोई डायमंड का सेट ले दो, ये नहीं कहा था कि मुझे कोई ब्रांडेड चीज ही चाहिए, रोटी पानी के अल्लाह के नबी दो दो महीने तक चूल्हा ही नहीं जलता तो जरा सी तसूदगी हो जाए। लेकिन वो मुतालबा एक नबी की बीवी होने के स्टैंडर्ड से गिरा हुआ था, क्योंकि अल्लाह ने अंबिया कराम को दुनिया में बिल्कुल कम पे रहने पे राजी किया होता है ताकि उनको जन्नत के दरजे जो मिल जाए। तो जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने ये बात की और आपको समझ आ गई कि ये सारी मिलके ये बात कर रही हैं, तो उस पे फिर आपने कहा कि अच्छा मैं तुम लोगों से 1 महीना ताल्लुक कायम नहीं रखूंगा। क्या किया, घर ही के अंदर ऊपर एक चबूतरा था वहां चले गए। मदीना में खबर फैल गई कि अल्लाह के नबी ने बीवियों को तलाक दे दी। अब दो सहाबी अबू बकर और उमर, माशाल्लाह इतने बड़े सहाबी, दोनों की बेटियां नबी सल्लम की जौजा थी, फिक्र लग गई, दोनों घबरा के आए, अबू बकर भी आए उमर भी आए। बाद में जब देखा तो आपने कहा नहीं मैंने तलाक नहीं दी। देखिए तलाक से रुकने की चीज ईला, तलाक दे दी तो फिर तो लंबे सिलसिले शुरू हो गए, तो कहा नहीं ईला, अब क्या कसम खा ली है कि मैं नहीं आऊंगा। फिर वो दोनों ने अपनी बेटियों को जाके खूब डांटा डपटा। बहरहाल जूं ही 29 दिन हुए तो अल्लाह के नबी अपने हुजरे से नीचे आने लग गए। तो लोगों ने जो जानते थे मामले को उन्होंने आपको एका किया कि शायद आप कहीं अपनी कसम से पहले ही ना आ जाए। कहा कि नबी अभी 29 दिन हुए हैं, आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी और आपको था कि महीना तो अमूमन 30 दिन का ही होता है। तो आपने मुस्कुरा के कहा कभी महीना 29 दिन का भी तो होता है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो शमसी कैलेंडर है उसमें तो 30 और 31 दिन होते हैं लेकिन जो कमरी या इस्लामी कैलेंडर है उसमें 29 और 30 दिन होते हैं। तो बहरहाल फिर आपने अपनी बीवियों के साथ दोबारा ताल्लुक कायम किया। तो क्या पता चला कि ये एक समझाने का अच्छा तरीका है। 4 माह की हद क्यों रखी? दूसरा सवाल, इस पे एक वाकया है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा थे तो मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे, यदि रात को एक राउंड ले रहे थे, क्योंकि अच्छे हुक्मरान जो होते हैं वो अपनी आवाम का हाल पूछते रहते हैं। जब देखा तो एक औरत के कुछ शेर गुनगुनाने की, या आप आज की जुबान में कहले गाने की आवाज़ आई, कि वो क्या गा रही है कि अगर मुझे अल्लाह का डर ना होता तो मेरे पलंग के पाए आज हरकत कर रहे होते। यानी आपने बाद में पता करवाया कि ये कौन औरत है जो इतनी सैड सॉन्ग गा रही है। तो लोगों ने बताया कि इसका शौहर फौज में गया हुआ है, यानी इस्लामी लश्कर में इसका शौहर गया हुआ है और उसको कई महीने हो गए हैं। अब ये बात हजरत उमर के लिए बहुत तकलीफ की थी कि एक औरत जो है वो अपने शौहर को मिस कर रही है और वो उसके पास नहीं। सीधा अपनी बेटी के पास गए जिनका नाम हजरत हफ्सा था, कहने लगे देखो शरम में कोई शर्म नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, एक औरत कितनी देर अपने मर्द से दूर रह सकती है? देखिए अब ये कितना प्राइवेट मैटर था, लेकिन दीन के अहकामात में इसकी कितनी अहमियत है। इशारा ये था कि मर्द को तो ज्यादा जरूरत होती है औरत की, लेकिन क्या औरत को भी होती है? और एक औरत ज्यादा से ज्यादा कितनी देर बाद खुद ही ख्वाहिश रखती है कि उसका मर्द उसके पास हो? तो बेटी ने कहा कि 4 माह, 4 महीने तक एक औरत सब्र कर सकती है, उसके बाद उसमें ख्वाहिश होती है। फौरन हजरत उमर ने कानून पास करवा दिया अगले दिन, आज के बाद कोई शादीशुदा शख्स 4 माह से ज्यादा सरहदों पर नहीं रहेगा। उससे पहले उसको वापस करो, उसकी छुट्टी है, कुछ अरसा अपनी बीवी के साथ रहे फिर वापस जाए। कितना खूबसूरत मुआशरा था। आप देखिए, सिर्फ एक औरत के जज्बात की वजह से हजरत उमर ने कानून बदल दिया, तो लिहाजा अब 4 माह की हद है, मर्दों को ये इजाजत नहीं दी गई। अब आप देखिए आज हमारी सोसाइटी में क्या, अल्लाह ताला हिदायत दे, माफ करे, मर्द बीवियों को पसंद नहीं करते। साल हर साल बीवियां घर में, सीधी सादी शरीफ औरतें हैं वो बैठी हैं, मर्द बाहर ख्वाहिशें पूरी करते हैं। कई कई साल में कई ऐसे मुल्क हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहती, हर दूसरे घर का ही मसला ये, मर्द करप्ट है, मर्द अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, औरतें दूसरी तरफ है। इस्लाम इस जोड़ से नहीं खुश होता। याद रखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इस्लाम ने इतना इस मामले को डिस्कस किया है कि आप समझते हैं कि शायद दीन सीख के आप बड़े नमाजे, रोजेदार और पर्देदार हो जाते हैं। सबसे पहले आपको अपने हकूक का पता चलता है। तो लिहाजा ये जो आयत है सूरत बकरा की 226 से 27, उसमें अल्लाह ताला ने अहकामात दे दिए, लिल्लज़ीन यूलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु तरब्बुसु अरबाति अशहुरिन फइन फाउ फइन्नल्लाहा गफूरुर रहीम वइन अज़मुत तलाक़ फइन्नल्लाहा समीउन अलीम। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक कायम ना रखने की कसम खा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ ताल्लुक ना कायम रखने की कसम एक किनाया है शौहर बीवी के ताल्लुक का। इनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह मुआफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है, और अगर उन्होंने तलाक का फैसला कर ही लिया हो तो जान रखे कि अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि फिर क्या कोई मर्द कमाने के लिए बाहर गया या मजबूरी में दूसरे मुल्क में रहता है, तो क्या फिर ये भी 4 माह के बाद फिर उसके लिए पाबंदी है? तो नीचे आप देख रहे हैं कि मसलहत और जरूरत के तहत बाहमी रजामंदी से। ये याद रखिए कि अल्लाह ने औरत को हक दे दिया है, वो अपने मर्द को मजबूर कर सकती है 4 माह बाद तुम अमेरिका से आओ। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में भी गया हुआ है, वो इससे भी दूर गया हुआ है, और बीवी कहते हैं नहीं भाई, ये मेरा हक है कि आप 4 माह के बाद वापस आएंगे, कुछ अरसा रहेंगे जाएंगे, औरत को कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर औरत कॉम्प्रोमाइजिंग है, समझती है अच्छा नहीं ठीक है, तो फिर गुनाह नहीं है, यानी फिर इजाजत है। मुरादे के नाराजगी के साथ या एक सरकशी के तौर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपस में कॉम्प्रोमाइजिंग होकर करें तो फिर उसकी इजाजत है। अज़ियत पहुंचाने के लिए ईला करना मना है। अन अबी सरमत रदी अल्लाह अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, मन दार अदर अल्लाह बिही व मन शाक शक अल्लाह अलैह। हजरत अबू सरमा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को नुकसान पहुंचाएगा अल्लाह ताला इसको नुकसान पहुंचाएगा, और जिसने किसी पर सख्ती की अल्लाह ताला उस पर सख्ती करेगा। इसे इब्ने माजा ने रिवायत की। देखिए, ये एक औरत को तकलीफ देनी है ना, औरत अमूमन नहीं बोल पाती, मर्द के आगे तभी ही होती है। औरत वो धमकी नहीं दे सकती जो मर्द देता है, तो अल्लाह ताला उसकी साइड लेके कह रहे हैं कि मर्दों तुम अपनी औरतों को नुकसान ना दो, अगर तुम उनको नुकसान दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें पूछेगा। ईला की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत यानी 4 माह गुजरने के बावजूद शौहर बीवी से जिंसी ताल्लुकात कायम ना करे और तलाक भी ना दे, तो औरत शरई अदालत की तरफ रुजू कर सकती है। अदालत ईला से रुजू या तलाक दोनों में से किसी एक के लिए मर्द को पाबंद करने का इख्तियार रखती है। अनिब ने उमर रदी अल्लाह अनहुमा इजा मदत अरबात अशहुरिन यू कफू हत्ता युतल्लिका। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब ईला के 4 माह गुजर जाएं तो मर्द को तलाक देने पर मजबूर किया जाएगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया। ईला के नतीजे में अगर मर्द अपनी बीवी का तलाक दे दे तो इद्दत के लिए आम तलाक की इद्दत होगी। बात समझ गया ना? कोई नहीं 4 माह के बाद भी ताल्लुक नहीं कायम कर रहा तो फिर गवर्नमेंट उसको फोर्स करेगी कि या तो रजू करो या फिर तुम उसको तलाक दे दो। अगर शौहर हल्फ की मुद्दत खत्म होने से पहले ईला से रजू कर ले तो इसे अपनी कसम का कफारा अदा करना चाहिए। यानी 4 माह की कसम खाई थी, 3 माह में ही ताल्लुक कायम कर लिया या गुस्सा छोड़ दिया या जो सोचा था, तो फिर कसम का कफारा देकर ऐसा कर सकता है। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, मन हलफा अला यमीनिन फरा खैरम मिन्हा फल युकफ़िर अन यमीनिही वल यफ़अल। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بات کی قسم کھائے اور پھر کسی دوسری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور بہتر بات پر عمل کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اور قسم کا کفارہ کتنا ہے؟ سورۃ مائدہ میں آپ لوگ بھی پڑھ چکے ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اور اگر ان میں سے کسی کام کی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ مائدہ کی آیت 89 میں ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ قسم کھا لی آپ نے، اب اس سے بہتر چیز دکھ گئی تو قسم توڑ دیں۔ اسلام نرمی چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اسلام سے جتنا دور ہوتے ہیں نا آپ اتنا ڈرتے ہیں، آپ اسلام کے قریب آ کے دیکھیے۔ میں کہتی ہوں جو ٹھنڈی چھاؤں آپ کو اسلام کی چھاؤں میں مل سکتی ہے وہ زندگی میں کہیں نہیں مل سکتی۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں ان کی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو بیگار کی کر رہے ہیں، یا لوگوں کا ڈر ہے ان کے دل میں، یا معاشرے کا ڈر ہے، یا خاندان کا ڈر ہے۔ آپ ایک اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، آپ اپنی زندگی انجوائے کریں گے۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں 80% عورتیں دوسروں کے لیے جیتی ہیں، لوگوں کو خوش، لوگوں کی باتیں، اور پتہ نہیں اجر بھی ملتا ہوگا کہ نہیں، کیونکہ اللہ کو شرک تو کوئی نہیں پسند ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا کریں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں۔ ہم دوسروں کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، اور دوسرے ایک خوش ہوگا تو دوسرا ہم سے ناراض ہوگا، تیسرے کو کریں گے تو تیسرا باتیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ کام کرتے تھے جس میں آسودگی ہوتی ہے۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے سکتی ہوں آپ کو، جیسے آپ دیکھیے کہ پیزا، دیکھ لیجئے کناروں سے سخت ہوگا، اس میں کم سٹف ہوگا، جتنا اندر کھاتے مڈل میں سے لیں گے وہ سب سے مزے کی بائٹ ہوتی ہے، جو آپ نے چھپائی ہوتی ہے اینڈ پہ کھاؤں گی، اور وہی کو اٹھا کے کھا جائے تو آپ چیخنے لگیں گے۔ ہے کنارے خشک ہوتے ہیں، بیچ کی روٹی نرم ہوتی ہے۔ اسلام کو جو لوگ باہر سے دیکھتے ہیں نا، کہتے اف پردہ، اف ناداڑی، اف نقاب، اف 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 کرتے رہتے ہیں، کیونکہ باہر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اندر آئیے اسلام کو، بالکل اسلام آپ کی امبریلا بن جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی کا آج ہمارا اپنا مسئلہ کہ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، ہم روتے بھی ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ہم دین کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور گربرائی بھی نہیں چھوڑتے، کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ آپ 4 دن کی زندگی آپ کی رہ گئی ہے، اپنی زندگی جیے۔ اور دنیا کہتی ہے یہ تو نہیں کرنا چاہیے، ایسے تو نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھہرے میں ذرا پوچھ لوں اللہ سے، اللہ جی یہ کر لوں گناہ تو نہیں؟ کر لو، کوئی گناہ نہیں، آپ کو بے پرواہ۔ اور سب سے بڑا آپ کو جو فائدہ ہوتا ہے نا، آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جس وقت تک آپ اپنے آپ کو لوگوں سے اوپر نہیں اٹھائیں گے، لوگوں سے بے نیاز نہیں کریں گے، آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اور ایک ہی کام ہوتا ہے، اللہ کے لیے کریں گے تو عبادت ہے، اور اگر آپ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ شرک ہے۔ ایک عورت تھی، مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ موضوع ہی عورتوں والا، بہت دکھی ہوئی، کہنے لگی میں اس گھر میں آئی، میں بوڑھی ہو گئی، میں نے ان کی خدمت کر کر کے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آج تک میرے سسرال مجھ سے خوش نہیں ہوئے۔ اچھا، میں ان کو قریب سے جانتی بھی تھی، وہ کسی حد تک سچ کہہ رہی تھی۔ کہتی میں اپنے بچوں کو اوپر کمرے میں چھوڑ کے آ جاتی تھی سردیوں میں، نیچے فجر پہ آ کے پہنچنا، اور سارے گھر کا لمبا چوڑا خاندان تھا، ان کے ناشتے بنانے، دیوروں کے، نندوں کے، یہ وہ، میرے بچے کو پتہ نہیں سانس کی تکلیف ہو گئی، ٹھنڈ لگ گئی، یہ ہو گئی، لیکن میرا سسرال مجھ سے خوش نہیں ہوا نا۔ تو مجھے کہنے لگی کہ ایسا کیوں ہوا ہے نا؟ میں نے کہا کہ دیکھیں سسٹر، آپ مجھے برا نہ مانیے گا، لیکن آپ کو آپ کے شرک کی سزا ملی ہے۔ کہتی شرک کیسے؟ میں نے کہا آپ یہ سب کچھ کیوں کرتی تھی؟ کہتی تھی میرا دل کرتا تھا کہ باقی بہوؤں کی نسبت میری بہت عزت ہو، میری ساس مجھے تعریف کرے، دوسروں کو بتائے، اور جو بھی آئے وہ کہ ان کی بہو کتنی اچھی ہے۔ میں نے کہا یہ شرک تھا۔ جب آپ نے ساس کو خوش کرنے کے لیے کیا تو پھر وہ آپ ساس تو خوش کبھی ہوتی نہیں آج تک، اللہ کو خوش کریں ساس خود ہی خوش ہو جائے گی۔ تو بات سچ ہے، چھوٹی چھوٹے پڑھنے والے سبق ہوتے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ جو کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ نے آپ کو کہا، اور جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کریں گے، بدلہ اللہ آپ کو ایسا دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے جیسے کمزور انسانوں سے نہ کچھ مانگیں اور نہ ڈریں، آپ انشاءاللہ بہترین زندگی بسر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے ایلا کیا، یہی جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا، بسی کی طرف اشارہ ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائه وکانت ان فقت رجله فاقام فی مشروبت له 29 ثم نزل فقالوا یا رسول اللہ علیت شہرا فقال الشہر 29 رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے ایلا کیا، اس وقت آپ کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 دنوں تک الگ بالا خانے میں قیام پذیر ہے۔ 29 دنوں کے بعد تشریف لائے تو لوگوں نے کہا آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ واقعہ تو میں آپ کو سنا چکی ہوں نا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے تو پھر اس کو کرنا پڑے گا۔ تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ جو طلاق जिहार, लियान और ईला, ये सब कुछ पूरा हो गया। मैं चाहूंगी कि जो आप लोगों के सवाल आता है इससे मुतल्लिक, वो अब थोड़े से डिस्कस कर लूं, क्योंकि अब इससे आगे थोड़ा सा टॉपिक बदलेगा इद्दत के मसाइल के। ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है हमारे कल्चर में कि जी तलाक की इद्दत और बेवगी की इद्दत क्या एक ही तरह की होती है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम इन सवाल को ले लेते हैं। आपका सवाल है कि दूसरी तलाक अगर 4 माह बाद दी जाए तो इद्दत क्या होगी? देखिए, दूसरी तलाक अगर 4 माह बाद दी, 4 माह दे के बाद देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, आप लोग फिर समझ लीजिए, और जो कल नहीं थे उनके लिए तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। इस्लाम में तलाक देने का खूबसूरत तरीका क्या है कि एक मर्द अपनी बीवी को वेट करे, पहले पूरे सारे मराहल सेट हो गए, शौहर बीवी के निभा की हर मुमकिन कोशिश है, पूरी बुक में हमने पढ़ा अच्छी बीवी कैसी होती है, अच्छे मर्द कैसे हैं, वो सारी कोशिशें करके सोच समझ लें, फिर भी लगता है कि तलाक देनी है, नई बात बन रही, हमारे मिजाज ही फर्क है या कोई बहुत ही मिसहैप हो गया, तो फिर मर्द इंतजार करे औरत के पीरियड्स के आने का। औरत पीरियड से पाक हो, अब उस मर्द ने कोई ताल्लुक कायम नहीं करना, फिर एक दफा तलाक दे दे, बस दैट्स इट, खत्म, खामोश हो जाए। एक माह गुजरेगा, औरत मर्द के घर में रहेगी, फिर दूसरा माह गुजर जाए, ना बोले, कोई हर्ज की बात नहीं, बोलना चाहे तो फिर दूसरे माह दोबारा बोलेगा, फिर दूसरे माह भी औरत साथ ही रहेगी। तीन इद्दतें, तीन हैज पूरे होने के बाद अगर वो ये सब कुछ कर ले तो फिर उसको इंशाल्लाह ताला अलग होगा। तो जब 3 माह गुजरते हैं उसके बाद अगर एक मर्द दोबारा नहीं कुछ बोलता तो खुद बहुत तलाक होती है। जिनका भी सवाल है समझ लीजिए, अगर एक तलाक देने के बाद जब दूसरी तलाक आपने लिखा 4 माह बाद, 4 माह बाद देने की जरूरत ही नहीं है। जूं ही पहली तलाक के बाद 3 महीने गुजरेंगे या 3 पीरियड्स औरत को आके फारिग हो जाएगी तो फिर तलाक हो जाएगी। तो इस सूरत में वो तलाक खूबसूरत तलाक है, उसमें दोबारा फिर शादी हो सकती है अगर बाद में वो चाहें। फिर अगला सवाल है, अगर कोई शख्स पागल हो जाए तो क्या वो सारी उम्र ऐसे शख्स के साथ रहे, यानी वो औरत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, औरत को हक हासिल है। एक मर्द पागल है, जहनी तौर पे वो बीवी के काबिल नहीं है, या वैसे ही वो अपने लिए अजियतनाक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो औरत कैसे रहे। देखिए, ये पागल को छोड़िए, कुछ भी हो सकता है, आपस के ताल्लुकात में तो जिंदगी में ऐसे ही चलता है ना। अब ये उस औरत पे है, इस्लाम ऐसी चीजों में बोलता नहीं है, बस एक कह दिए कि वला तंसवुल फदला बैनकुम, आपस के मामलात में एक दूसरे पर फजल एहसान नरमी करते हुए ना भूलो। अब देखा जाएगा वो मर्द क्यों पागल हुआ है, अगर तो वाकई इस औरत की वजह से पागल हुआ है तो उसको छोड़े ताकि वो बेचारा ठीक हो जाए, ये भी हो सकता है, वो औरत छोड़े तो उम्र ठीक भी हो सकता है, राइट? लेकिन कोई भी बीमारी है, लेकिन अगर एक औरत को किसी, देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, किसी एक्सटेंड पे आके औरत को ये फील होता है ना कि मर्द तो मेरे जज्बात पूरे नहीं कर रहा, ही इज नॉट फुलफिलिंग मी, और मैं सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर वो उसे तलाक ले सकती है। तो अगर एक औरत है वो कहती है 4-7 साल जिंदगी साथ गुजर गई है, अब ये पागल हो गया, वो तलाक लेके करेगी भी तो क्या करेगी, वैसे ही उसका जहर के ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फिर एक किसी के बिहाफ पर तलाक दे, निकाह में भी झूठ शामिल था तो मामला क्या होगा? देखिए, कोई किसी के बिहाफ पे तलाक नहीं दे सकता, पीछे हमने ये मसला पढ़ लिया था, कोई दूसरे, यदि माँ नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरफ से तलाक देती हूँ, नहीं कर सकती। और पीछे आपने पढ़ लिया कि जो मजबूर कराएगा, मजबूरी की या इकराह की तलाक नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद ये कि निकाह में भी झूठ शामिल था तो मामला क्या होगा? देखिए, झूठ था तो उसको खुलना चाहिए, अगर निकाह के वक्त झूठ बोला है और सरकमस्टांसिस छुपाए गए तो आपके पास इख्तियार मौजूद है। इसमें से मैं आप इसी सीरीज की बुक निकाह के मसाइल जरूर पढ़ें, वो भी पढ़ी हुई हमने अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें निकाह की बहुत सारी किस्में हैं, मजबूरी का निकाह, जबरदस्ती का निकाह, बचपन का निकाह, वट्टे सट्टे का निकाह जो हमारे कल्चर में, और इसका सवाल का जवाब इंशाल्लाह आपको उसमें मिल जाएगा। खुद पढ़ लीजिए, ऑडियो ना सुने, आप सिर्फ वो बुक खोल के देख लें तो इंशाल्लाह आपको उसके हेडिंग्स तो समझ आ ही जाएंगी।